نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم روح القرآن آج ہم اس میں کریں گے پارہ نمبر 20 ام من خلق سوالات جواب ڈھونڈنے کے لیے یعنی سورۃ نمل کی آیت نمبر 60 سے یہ سورۃ شروع ہوگی اس پارے میں اور 96 تک چلے گی ایک چیونٹی کے نام پر ایک سورت کو رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ توحید پہ رہنے والا ایک چیونٹی جو اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر ایک شاید نظر آنے والی چیزوں میں بہت چھوٹی سی چیز ہے اس سے سبق سیکھ لے کہ جب وہ اللہ پر نظریں لگا سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں. تو یہاں کچھ سوالات ہیں جیسے آیت نمبر 60 سے 62 میں مظاہر قدرت کا خالق کون ہے, یعنی وہ چیزیں جو ہمیں کائنات میں دکھتی ہیں رات دن صبح و شام, تو آخر ان کو بنانے والا کون ہے؟ ام من خلق السماوات والارض, بس کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی. پھر تیسری چیز, پھر اگا دیا اس کے ساتھ بہت رونق والے باغات کو, تم تو ایسے نہیں تھے کہ تم اس کے درخت کو اگا لیتے. اب یہ دیکھیے, ایسے لگتا ہے جیسے شعور پہ ہتھوڑے برسائے جا رہے ہیں نا, 1 2 3 4 5 اور آگے پھر سوال کیا کیا, الہ مع اللہ, ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ, کوئی ہے جو ان سب چیزوں کو پیدا کرے. تو یہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم توحید کی اقسام کو سمجھیں, کیونکہ آج ہمارے ہاں سب سے زیادہ کمی اسی میں ہے. توحید کی 3 اقسام ہوتی ہیں. سب سے پہلی توحید ربوبیت. توحید ربوبیت وہی ہے جس کو رب کے لفظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں, رب العالمین. اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال یعنی کائنات اور مخلوقات کو پیدا کرنے اور مارنے وغیرہ جیسے کام ہے, اس میں اکیلا اور واحد مانا جائے. یعنی توحید ربوبیت کا تقاضا کیا ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ اس کائنات کی ہر چیز, چاہے یہ کائنات خود یونیورس یا مخلوقات یعنی ایوری کریشن, اس کو پیدا کرنے والا اور اس کو مارنے والا صرف ایک اللہ ہے. دوسری قسم ہوتی ہے جس کو توحید الوہیت کہتے ہیں. الوہیت کا لفظ وہی ہے جس سے لفظ الہ بھی ہے, اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. یا نوٹ کیجئے گا کہ ہمارے کلمے میں الفاظ لا الہ الا اللہ آتے ہیں, لا رب الا اللہ نہیں آتے. یہ بہت بڑا فرق ہے, کیونکہ آج تک بھی جتنا شرک ہوا ہے نا وہ الوہیت میں ہوا ہے. ربوبیت میں تو شرک ہو ہی نہیں سکتا. بڑے سے بڑے فرعون اور نمرود نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے آسمان کو بنایا, میں نے سورج کو بنایا, بلکہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے مناظرے کے دوران کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے, تو مغرب سے لیا, تو فبوہت الذی کفر. کیونکہ یہ انسان کے بس سے بہت بڑی چیزیں ہیں. اور دوسری بات ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ سب بنی تھی. مکہ والوں کا شرک بھی ربوبیت کا نہیں تھا. وہ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کو بنانے والا الحی الممید سب مانتے تھے. مسئلہ کیا تھا؟ الوہیت میں شرک, عبادت میں دوسروں کو شامل کرتے تھے. آج ہمارا بھی یہی حال ہے. کہنے کو ہم مسلمان, نام ہمارا اسلام والا, لیکن آج ہمارے کلچر میں عمومیت کے ساتھ جو شرک ہو رہا ہے وہ الوہیت کا شرک ہے. تو دیکھتے ہیں توحید الوہیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو بندوں کے افعال, اقوال, ظاہر اور باطن سب کے لیے منفرد جاننا اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. توحید الوہیت کیا ہے کہ بندے جو کام کرتے ہیں, جو بولتے ہیں, جو ان کی چیزیں دکھتی ہیں ظاہر میں ہو یا باطن میں, ان سب کو جاننے والا اللہ ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. اس میں غلطی لگتی ہے, فلاں شریک ہے, فلاں کو اللہ نے اختیار دے دیا, جیسے اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے, جیسے بادشاہ کے درباری ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, لیس کمثلہ شیء, اس کی تو مثال جیسا بھی کوئی نہیں. تم اس کو دنیا کے بادشاہوں سے تشبیہ دو گے تو کیا پتہ چلا کہ توحید الوہیت کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر تیسری قسم جو بہت ہی زیادہ آج ہمارے کلچر میں گم نام ہے, بلکہ بس نام پڑھنے کی حد تک جھوم جھوم کے رائمز کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں الاسماء الحسنا, لیکن اس کو سیکھتے نہیں ہیں. تو تیسری قسم توحید اسماء صفات ہے, اس کو اشرف العلوم بھی کہتے ہیں. और इसी पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन एक साल में 120 के करीब नाम किए थे। तो अल्लाह की सिफात, उसके नाम वो क्या हैं कि अल्लाह के इन सिफात पर ईमान रखना जो अल्लाह ताला ने ख़ुद अपनी ज़ात के लिए साबित किए, और इनकी नफ़ी करना जिनसे अल्लाह ने नफ़ी की। मसलन आप अल्लाह ताला को शाफ़ी कह सकते हैं लेकिन आप अल्लाह ताला को डॉक्टर नहीं कह सकते, ठीक है, ये मुराद है। तो ये एक चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। अब सवाल ये कि जब कोई सच्चे दिल से रब को अपना इलाह मान लेता है तो फिर तब्दीली क्या आती है? दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लीजिए कि मुझे कैसे पता चले कि मैं अच्छी मुसलमान हूँ कि नहीं, क्या वाकई मैंने अल्लाह को इलाह मान लिया है? तो इसको अल्लामा इकबाल के उस शेर से समझ लीजिए, ज़ुबान से कह भी दिया तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज हम नाम के साथ तो मुसलमान हैं लेकिन दिल से लेकर निगाहों और जिस्म के एक एक उज़्व का मुसलमान होना लाजमी है। इसके बाद आयत नंबर 63 से 65 में मोहसिन हकीकी कौन है? हम सारा वक्त दूसरों के गुण गाते रहते हैं लेकिन हकीकत है कि हमारा मोहसिन हकीकी अल्लाह ताला है। अब मैं यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, है कोई जो तुमको राह दिखाए खुशकी और तरीके अंधेरों में? सवाल ऐसे उठाए जा रहे हैं कि जिसके बाद इंसान सिर्फ अंदर झांक सकता है और कुछ कर नहीं सकता। और कौन है जो हवाओं को खुशखबरियां देने वाली बनाकर भेजता है अपनी रहमत से पहले, यानी बारिश होने से पहले हवाएं शुरू हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस पे भी कुरान की वही की बारिश होनी होती है ना, उसके लिए भी कुछ हवाएँ चलती हैं, ख्वाब आने लग जाते हैं, दिल में तलब आने लगती है, मैं भी सीखूं कुरान क्या कहता है, और इसी तरह की बातें। और इसी तरह से कुछ और चीज़ें जिसमें तख्लीक की बात है, ज़मीन व आसमान से रिस्क देने की बात है, ये सब करके क्या पूछा? इलाहुम्मा अल्लाह, है कोई इला अल्लाह के साथ? अच्छा, कुल हातु बुरहानकुम, फिर ले आओ अपनी दलील, इन कुंतुम सादिकीन, और है ही कोई नहीं तो फिर तुम मान जाओ कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सारे सवाल कल मक्का वालों के शिर्क के ऊपर एक चोट थे। आज भी आप देखिएगा, किसी से भी पूछ ले आप तो वो इसके जवाब में आए बाएँ शाएँ करेंगे। तो क्या पता चला कि लोग खुद को ना जानते हुए भी शिर्क कर रहे होते हैं? फिर इसके बाद वजह क्या है? तो शिर्क का सबब इनकार आखरत है। आयत 66 से 72 में अल्लाह ताला ने एक हकीकत खोल दी, बल्कि दार का इल्म फिल आखिरा, आखरत के बारे में इनका इल्म बहुत मुख्तसर हो गया, इधर उधर हो गया, खो गया, बल्कि शक भी है, बल्कि ये अंधे हैं। और देखो ना कुफार ने क्या कहा, क्या हम मट्टी हो जाएंगे और हमारे माँ बाप फिर निकाले जाएंगे? हाँ हाँ, ये वादे तो पहले भी दिए गए हमें भी और हमारे बापों को भी, और ये कुछ नहीं मगर असातीरुल अव्वलीन। अल्लाह के नबी की बात सुनकर इस तरह का रिस्पांस देते थे उस दौर के लोग, कहते थे खामखा की बातें, अगर मुर्दे जिंदा होते तो अब हमारे हो चुके होते ना, हमारे दादा को बुलाओ, पर दादा किधर है, अच्छा वो उनसे ऊपर की नस्लों को बुला लो। मुराद क्या था कि बेयकीनी है हमें। अल्लाह के तकुल सीरु फिल अर्दी, जाओ ज़मीन में घूम फिर लो, फिर देख लो कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों का, तुम जाकर पिछली कौमों को देख लो। और साथ ही फिर नबी को तसल्ली दी जा रही, वला तख्सन रहीम, आप इनके ऊपर दिल ना मैला कीजिए और ना आपके सीने में घुटन पैदा हो इनकी इन चालों से जो ये चल रहे हैं। और ये तो कहते हैं कब आएगा ये वादा या कब पूरा होगा वादा, अगर तुम सच्चे हो आप इसका एक जवाब दे दें, कुलसाई यकून रदीफा, शायद उम्मीद है, दोनों ही लफ्ज सही हैं, हो सकता है बिल्कुल तुम्हारे करीब लगा हुआ। ये जो रदीफ है ना, रदीफ, एक ऊँट पे दो लोग बैठते हैं ना तो पिछले को अगले का रदीफ कहते हैं, और ये काफी और रदीफ जो शेर में वो भी यही कुछ है ना, एक मिसरे के साथ दूसरा मिसरा जुड़ा हुआ। तो पता क्या चला कि तुम तो उसको दूर समझ रहे हो लेकिन हो सकता है वो बिल्कुल करीब हो जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो। तो क्या पता चला कि शिर्क का सबब इनकार आखरत है। आगे थोड़ा पढ़ते हैं तो आयत 73 से 75 में आखरत का साफ इनकार करते हुए दिख रहे हैं ये लोग। वइन्ना रब्बक लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास, और बेशक आपका रब बड़े फजल वाला है लोगों पर, लेकिन अक्सर उनमें से जो है वो शुक्र नहीं करते, और बेशक आपका रब अलबत्ता जानता है। माँ तो किन्नु सुदूर हूँ, क्या छुपा रहे हैं इनके सीने और क्या वो जाहिर कर रहे हैं, और कोई आसमानो ज़मीन की चीज़ उससे छुपी हुई नहीं, मगर वो एक किताब मुबीन में लिखी गई है। मुराद ये कि ये अल्लाह से छुपा नहीं सकते, कोशिश तो ये बहुत करते। फिर आगे अल्लाह ताला की बेमिसाल अजमत 76 से 78 में, इन नहाजल कुरान, ये कुरान अल्लाह ताला की अजमत की एक बहुत बड़ी दलील ये कुरान है। और यहाँ कुरान का मानी किसके साथ आया है, यकुस्सु अला बनी इसराइल अक्सर अल्लज़ी हुम फीही यख्तलिफून। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ अल्लाह ने लफ्ज़ कुरान पिछली किताबों के लिए भी इस्तेमाल किया है, और कुरान का मानी होता है बहुत पढ़ी गई, करा या क्रियो से या साथ साथ लगी हुई। लेकिन हमारे लिए इसमें क्या है कि अल्लाह की तरफ से आई हुई किताबें खुदा व रहमा होती हैं। लेकिन ये फ़ायदे कौन उठाते हैं, मोमिनीन ईमान वाले। कोई बात नहीं, इनको बात समझ नहीं आ रही, छोड़ दीजिए इनको, क्योंकि बेशक आपका रब इनके दरमियान फैसला करेगा अपने हुक्म से, क्योंकि वो गालिब भी है और इल्म वाला है। यानी कोई अल्लाह को मान ले तो उसकी मर्ज़ी, नहीं मानता तो उसकी खुशी, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके बाद फिर नबी सल्लम की दिलजोई है 79 से 81, अल्लाह अपने हबीब की दिलजोई के लिए क्या कहते हैं, फतवक्कल अलल्लाह। आपको मुझे शायद इन आयात की गहराई न समझ आए, अगर आप ख़ुद को मक्का की उन गलियों में महसूस करें कि जहाँ नबी सल्लम पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, कभी कोई मजनू कह रहा है, कोई दीवाना कह रहा है, कोई बच्चों को पीछे लगा रहा है, तो क्या होगा। आज हमें ज़रा सा दीन की वजह से कोई बात कर दे, हमारे आंसू नहीं थमते, हम कहते हैं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं कहूंगी। सर पे दुपट्टा लिया तो किसी ने कह दिया आप तो ऐसी लग रही, अब मैं नहीं लूंगी। मैंने हिजाब किया फिर बड़ी लगने लग गई, फिर बच्ची का रिश्ता नहीं आया, उतार तो इसको। बेटे ने दाढ़ी रख ली, शादी नहीं होगी। हमें तो ये बातें समझ नहीं आती। नबी को तो गलियों में खड़ा कर कर के लोग कहते थे इन्ना कलम मजनून, पीछे सूरह हिजर में हम पढ़ के आए। तो लिहाजा अल्लाह के नबी को तसल्ली दी, इन्ना कला तुस्मिल मौत, आप मुर्दों को नहीं सुनवा सकते और ना बहरों को। मतलब यह है कि ये अंदर से गूंगे बहरे अंधे हो चुके हैं, आप इनको छोड़ दीजिए, और अब इनको इंतज़ार करना है किसका, दाबतुल अर्ज़ का, कुर्बे क़्यामत की एक निशानी, 10 मेजर साइंस ऑफ क़्यामा, ज़मीन से एक जानवर के निकलने की बात आयत 82 में देख लीजिए, व इज़ा बकाल कौलू अलैहिम, यानी जब उनके ऊपर ये बात साबित हो जाएगी, मुराद ये कि क़्यामत करीब होगी, अखरजना लहुम दाबतम मिन अलर, हम ज़मीन से इनके लिए एक दाबा निकालेंगे। दाबा दबीब से बारीक बारीक चाल चलने वाला, क्रिएशन के मानों में क्रिएचर कह लीजिए, और वो लोगों से बात करेगा, क्या कहेगा, अन्ना सकानु बि आयातिना ला यूकिनून, कि लोग अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं रखते थे। आप इसकी मज़ीद तफसीलात पढ़ना चाहें तो क़्यामत का बयान तफहीमुस्सुन्नाह सीरीज़ बुक है, उसमें से पढ़ लीजिए। सुनना चाहें तो ऑडियोज़ भी मौजूद है, वीडियो भी मौजूद है, लेकिन ये क़्यामत से पहले होगा। और आप पता है ये कब होगा, जब लोग अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर छोड़ देंगे। छोड़ा हुआ आज अक्सरियत ने, अल्लाह हमें इस काम के लिए चुन ले। फिर आगे आयत नंबर 83 से 85 में आयात इलाही की तकजीब करने वालों का इंजाम, व यौम नख्शुरु मिन कुल्ली उम्मा, और हम उस दिन उठाएंगे हर उम्मत में से एक फ़ौज को। वो कौन सी होगी जो हमारी आयतों को झुटलाती थी, और वो क्या होंगे, गिरोहों में होंगे, यूज आउन लाइक माइंडेड पीपल लिव टुगेदर। फिर वो हमारे पास आएंगे, फिर उनको पूछा जाएगा क्या तुम हमारी आयतों को झुटलाते थे, और क्या तुम्हें उसका इल्म नहीं आया था जो तुम कर रहे थे, तुम्हें पता नहीं था तुम कर क्या रहे हो। वक़ाल कौलू अलैहिम, फिर उन पर साबित हो जाएगी, चिस्पा हो जाएगी बात, बिमा ज़लमू, और वो बात क्या, फ़हुम ला यंतकून, फिर वो बात नहीं कर सकेंगे। आज ज़ुबानें बहुत चलती हैं ना अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़, अल्लाह की बात को सुनने के बाद हम नहीं मानते, ये कुरान नहीं है, ये कैसा है, 1400 साल पुराना। अल्लाह कहते हैं उस दिन लग पता जाएगा। फिर आगे आयत 86 में, रात दिन के आने जाने में कुछ निशानियाँ, अलम यरो, क्या नहीं देखा उन्होंने, मुराद क्या है कि गौर करो, अन्ना जलनल लैला, हमने रात बनाई, लियस्कुनू फी, ताकि इसमें सुकून पकड़ो, वन्नहार मुबसिरा, और दिन को बड़ा रोशन देखने और दिखाने वाला, यानी वो जिसमें चीज़ें भी दिखती हैं और वो दिन भी दिख रहा होता है, और बेशक इसमें निशानी है उस कौम के लिए जो ईमान लाती है। यहाँ क्या निशानी है, यहाँ निशानी यह है कि जिनके आमाल आज छुपे हुए हैं ना रात की तरह, क़यामत के दिन वो खुले दिन की तरह नज़र आएंगे। बहुत सिला माफ़ी सदूर, उस दिन सीनों के अंदर छुपी हुई बातें, ग्रजेस, गुस्सा, गम सब खुलकर सामने आ जाएगा। तो क़यामत के दिन में हर चीज़ खुले मैदान में होगी। अब आगे रोज़े क़यामत की कुछ कैफियत है, आयत 87 से 88 में। व यौम युनफ़खु फिस्सूर, और जिस दिन फूका जाएगा सूर में, फ़फ़ज़िया मन फिस्समावात, फिर बेहोश हो जाएंगे सब जो कि आसमानों में हैं और ज़मीन में, हाँ मगर जिसको अल्लाह चाहे, और सब उसके सामने आएंगे आजिज़ होकर। और तुम पहाड़ों को देखते हो कि वो तुम समझते हो कि ये जमे हुए हैं, हालांकि वही तमर्रू, वो तो चल रहे हैं। कैसा मर्र साहब, बादलों की तरह चलना। सुन अल्लाह, ये अल्लाह की कारीगरी है। उर्दू में हम बोलते हैं ना सनत, सनत व हिरफत वही लफ्ज़ है, यानी ये तो अल्लाह का शाहकार है जिसने हर चीज़ को क्या किया। सुन अल्लाहिल्लज़ी अत्कन कुल्ल शैइन और इन्नहू खबीरुम बिमा तामलून। आप देखिए कि ये पहाड़ चल रहे हैं, कभी आप खुली जगह पे बैठकर आसमान को देखें ना, तो जब बादल चलते हैं तो आपको लगता है कि आप भी चल रहे हैं। तो ये आयत बता रही है कि या तो क़यामत के दिन या आज भी पहाड़ चल रहे हैं। मुराद ये है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। करें क्या, क़यामत करीब है तो करें क्या, पुरमन आखरत के लिए आज ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर लो। बस वैसे छोड़ दो, जो बात नहीं समझ आती उसको जाने दो, लग पता जाएगा। इतनी बहस क्यों, क्या होगा, कैसे होगा, कुरान में एक जगह ऐसे है, दूसरी जगह वैसे है। अल्लाह ताला 89 से 90 में क्या कहते हैं, मन जा बिल हसना, जो कोई अच्छे काम करके लाएगा, गुड डीड्स के साथ आएगा, राइटियस डीड्स के साथ आएगा, फलहू खैरु मिनहा, उसके लिए उसका उससे अच्छा बदला है। और वो उस दिन की घबराहट से अमन में होंगे, और जो इसके बरक्स बुराइयां लेकर आएगा, फकुब्बत वुजूहुहुम फिन्नार, तो उनको मुंह के बल आग में गिरा दिया जाएगा। और क्या पूछा जाएगा, हल तुजज़ौना, क्या तुम्हें जज़ा मिल गई है, वही मिली है ना, इल्ला मा कुंतुम तामलून, जो तुम करते थे। तो यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा इंसान के शऊर को बेदार करने वाली बात कि आज की नेकी कल की करेंसी है। बंदा जितना अमल करता है अल्लाह उससे बढ़कर सवाब देता है। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। आम तौर पे जो महज़ब लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है तो मैं उसके लिए कर दूँ। और अल्लाह ने फितरत का निज़ाम भी ऐसे ही बनाया, कभी आपको मेरी ज़रूरत, कभी मुझे आपकी ज़रूरत। आज माँ बच्चे को संभाल रही है तो कल बुढ़ापे में माँ को ज़रूरत है कि बच्चे संभाले। तो अल्लाह ताला तो उससे बहुत ज़्यादा अता करता है जो कि बंदा किसी के लिए कोई करता है। इस पे इमाम कुर्तुबी का एक बड़ा खूबसूरत सा कौल है, कहते हैं कि बंदे के अमल, कौल और इसके ज़िक्र से अल्लाह का सवाब बेहतर है। यानी बंदा जो कुछ भी करता है ना, अल्लाह उसे अच्छा ही बदला देता है। इसी तरह अल्लाह की रज़ा बंदे के लिए इसके अमल से बेहतर है। यानी बंदा जो भी अमल करेगा ना, अगर उससे अल्लाह की रज़ा मिल गई तो वो बहुत बड़ी चीज़ होगी। ये कौल इंसान के सवाब को कई गुना बढ़ाने की तरफ लौटता है, क्योंकि अल्लाह ताला इसे एक नेकी के बदले 10 नेकियां देते हैं, और थोड़ी सी मुद्दत में ईमान लाने के बाद उसके बदले में दायमी सवाब देते हैं। आप देखिए कि हम चंद साल ही दुनिया में नेकी करते हैं ना, तो हमें चंद साल ही जन्नत में रखना चाहिए, ख़त्म हो जाए? नहीं। ये कैसी खूबसूरत बात है कि यहाँ की 20, 30, 40 साल की एक शौरी ज़िंदगी, जिसमें बंदा बचपन और बुढ़ापे को निकाल दे, तो बीच के ये 20, 25, 30 साल हैं, तकरीबन 40 लगा लीजिए, कर लीजिए नेकियाँ, क्या जाएगा उसका बदला, हमेशा की।